पर उसके और उनका क्रम और कालचक्र कहती है ना, चार अनुयोग तो हैं और चार कथाएं कौन कौन ये जो है उन पर टच करना है। तो मैं सोचता हूँ कि आप चार कथाओं के बारे में आप समझ लें और चार अनुयोग के बारे में भी समझ लें, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। और या फिर जो है थोड़ा सा तांबर पड़े उसको करके फिर पहले थोड़ा सा कर लें फिर उसके बाद इसको करें। लाइए थोड़ा सा दो चार पास बोल के देखता हूँ कैसे आते हैं, मन थोड़ा सा बना है। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्यतन क्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रगेन्द्रम् नाप्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्व
श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते वलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजम् आस्तां तव स्तव नमस्ते.
आज महाराज जी आपने वो वाली रानी को दिया.
मैंने बसंत तिलका नहीं किया, स्पष्ट उच्चारण के लिए किया. बसंत तिलका में दूसरे ढंग से इसमें उच्चारण आप सीख सकेंगे. बसंत तिलका में उच्चारण नहीं सीख सकेंगे उच्चारण के लिए. बसंत तिलका में तो बसंत तिलका आ गया. भक्तामरु प्रणत मौलिमणि प्रभाला मुच्योतकं दयित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य येन पादयुगं युगादा वालं बलं भवजने पततां जनाना य संस्तुतः सकलवाङ्मये तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोषे किलाहमकृतं प्रथमं विनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीक्ष स्तोतुं समुच्यतमतिर्विगतस्त्रपोगम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैत्सति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणशमु प्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरु गुरुं प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोऽच्यतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं पूजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रकटः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नापेति किं निजशिशोपरिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते वलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्पवनं मयेद् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति शतां नलनीदलेषु मुक्तापलच्युतिमुपैति ननीदबिन्दु आस्तां तव
tava namasta samasta dosham tatsam kathapi jagatam duritani hanti dure sahasra kirana kurute prabhaiva padmakareshu jalajani vikashu bhandi nātyadbhutam bhuvana bhūṣana bhūtanāt bhūtair gunair bhuvibhavantam abhistu varutah tulyā bhavanti bhavato nanutena kimbha bhūtyāśrutam yaitanātva samam karinti drishtvā bhavantam ahimesh vilokaniyam nānyatra dōṣam upayāti janasya cakṣu pīśāpayah śaśikaratyuti dukta sindho kāraṁ janam jananidhenasitum karuṣṭe yaiśāntarāgaruṣṭhi paramānuhastvam nirmāpitasthi bhuvanai kalalāmabhūta tāvantareva khalutekyanavah pratītya yatke samānama param nahi rūpamasti.
एक बार में मैंने कभी बुरा मत नंबर सम्यक प्ररूपण करने वाली जो कथा होती है तत्वों के बारे में जब हम समीचीन रूप से कथन कर रहे हैं कि ये सात तत्व इनका ऐसे स्वरूप है, तो ये जो इस तरह से जब हम प्ररूपण करते हैं अपने धर्म का और तब उसको बोलते हैं आक्षेपनी कथा। और जब हम अनेकांत दर्शन का पोषण करने वाली कथा करते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं उन सब दर्शन का कथन करके फिर जो अनेकांत दर्शन है जैन दर्शन उसके द्वारा उन सब का समाधान देते हैं, तब वो कहलाती है विक्षेपनी। विभिन्न धर्मों वाले लोग बैठे हुए हैं तो उनसे डिस्कशन करना है तो उनके धर्म की बात कि आपके धर्म में ये चीज दिखी है, लेकिन ये इस अपेक्षा से करी गई है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, आप जिस तरह से उस चीज को कह रहे हैं वैसा ही नहीं है, और भी कुछ है। जैसे कोई कहे कि आत्मा तो हमेशा शुद्ध बुद्ध एक निरंजन स्वभाव वाली है, तो कहते ये जो आप कह रहे हैं वो आत्मा के आत्मद्रव की अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से आप ऐसा नहीं कह सकते। पर्याय की अपेक्षा से तो वो विभिन्न प्रकार के रूपों में भी परिवर्तित होती है और वो अशुद्ध भी होती है, अकेली शुद्ध भी नहीं है। और जब उसकी पर्याय अशुद्ध होती है तो द्रव भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि द्रव के बिना पर्याय नहीं रहते, और अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव पूरा का पूरा अशुद्ध हो गया। इस तरह से जब हम उसको समझाते हैं तो वो कहलाती विक्षेप नहीं है, अर्थात होने वाले जो विभिन्न दर्शन हैं उन दर्शन की सारी बात का समाधान देना, अपने दर्शन की प्ररूपना करना और दूसरे के दर्शन का समाधान करना, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। तो अपने दर्शन का प्ररूपण कर रहे हैं वो तो आक्षेपनी कथा होगी, जब हम दूसरे का समाधान कर रहे हैं तो वो विक्षेपनी कथा होगी। ये दोनों कथाएं हमेशा नहीं की जाती। जो विशेष व्यक्ति है, जो संसार से भयभीत है, संसार से पार होना चाहता है, उसको समझाओगे तो कुछ समझ में आने वाली है। जो श्रद्धालु भी नहीं है उसके लिए आप इस तरह का ज्ञान दे देंगे तो और ज्यादा विक्षेपित। एक सामान्य व्यक्ति आवे और उससे कहो कि जी सब दर्शन है और उसमें हमने अपने अपने अनुसार ये किया है, या उसको सत्य का स्वरूप बताना शुरू कर दो, तो उसकी अकल में कुछ नहीं आने वाला। वो अभी तो आया था, अभी उसको ये भी तो है नहीं कि भक्ष क्या है अभक्ष क्या है, इसका भी उसे ज्ञान नहीं है। और उसे हम ये कहें कि ये ले लो किताब और इसमें से जो है सात तत्वों का स्वरूप पढ़ लो, क्योंकि जब तक तुम्हें सात तत्वों के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारी हूं से ही जाएगी।
अभी उसकी सात तत्वों के जानने योग भूमिका नहीं बनी आए तो फिर अभी आगे की भूमिका क्या होगी, तो उसको नहीं तो आक्षेपनी विक्षेपनी कथा जब जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जावे उसके लिए देना, पहले मत दे देना, अन्यथा वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ तो हो गई नहीं और विचलित हो गई। तो कहते फिर क्या करें हम, तो कहते दो और कथाएं हैं, एक जो है संवेगनी कथा है और एक निर्वेगनी कथा है। पुण्य के फल का कथन करने वाली कथा ये संवेगनी कथा है। महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इतना इतना छोटा सा भी अगर उन्होंने धर्म का काम किया है तो उसका इतना बड़ा फल दिखाएंगे, और अगर किसी ने छोटा सा भी पाप किया है तो इतना बड़ा उसको फल मिला उसका ये दिखाएंगे, ताकि वो पाप से भयभीत हो और धर्म में लग जावे, ऐसी कथा कहेंगे वो संवेगनी कथा कहलाएगी। तो पुण्य का फल का कथन करने वाली कथा संवेगनी कथा है और पाप के फल का कथन करके पाप से विरक्त करने वाली कथा निर्वेगनी। बस सामान्य रूप से आपको मैंने चारों परिभाषाएं बताई पर उनका बहुत डिटेल भी है। अपन देखें अपने दर्शन के बारे में प्ररूपण करने वाली कथा और दूसरे दर्शन के समाधान देने वाली कथा, पुण्य के फल को एलाबोरेट करके दिखाने वाली कथा, पाप के फल को बढ़ा करके उससे विरक्त करने वाली कथा, इन चार में से अपन देखें तो सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पाप का फल बता करके उसके विमुक्त करने के लिए हमें पहले लाना पड़ेगा, फिर पुण्य का फल बताना पड़ेगा कि देखो इतना इतना फल मिलता है इससे तुम इसमें स्थिर रहना, अशुभ से बचना, शुभ में लग जाना, फिर उसके बाद क्या इसी में लगी रहोगे, जानो तत्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, या धीरे धीरे जाना, उसे लगा दिया। अभी तो उसे कहना चाहिए मंदिर आने की सुध नहीं थी, उसे हम पहले दिन आकर के और अगर तत्व के बारे में कहेंगे तो कहते कि ये नहीं काम नहीं चलेगा, उसको मंदिर आने की हैबिट डालो, सत्यदेव गुरु शास्त्र के चरणों में बैठना शुरू करे, पाप से भयभीत हो गए और जब कषाय उसकी मंद हो गए तब फिर आक्षेप नहीं आक्षेप, ऐसे भी है ये चार कथाएं कही गई और इसी पूरे आगम को चार अनुयोग में डिवाइड किया गया। किस तरह से अब हम उसको कैसे, ये तो कथाएं दी हुई हैं चार प्रकार की कथाएं, इसमें किस कथा का प्ररूपण किस अनुयोग में होगा, अनुयोग का मतलब है शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे अपन एग्जैक्ट उसकी परिभाषा, मैं एक बार शायद परिभाषा आपको, पदार्थ के जानने भूत उपाय के अधिकार का नाम अनुयोग है, जिसके माध्यम से हम पदार्थ को जानते हैं उसका वो एक चैप्टर उसका वो अध्याय उसको बोलते हैं अनुयोग। तो चार अनुयोगों में जानने के उपाय हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि चार अनुयोग में पूरा का पूरा जैन दर्शन डिवाइड हो गया है, नहीं, पूरे जैन दर्शन को हम चार तरह से जान सकते हैं, हमारे कथन करने की चार शैलियां हैं। कोई व्यक्ति है अभी अज्ञानी है उसके समझ में नहीं आता है, संसार से उसका राग बहुत है, तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए संसार के राग की कथा के बीच में धीरे से बीच रास्ता की बात कहेंगे, तो कहानी तो सुनाएंगे पूरी राग की और उसमें बाद में कहेंगे कि देखो इतना सब होने के बाद भी सब छोड़ छाड़ के चले गए, तो पहले पूरा घाट बाट दिखाएंगे कि भरत चक्रवर्ती की इतनी प्राणियां थी, इतना वैभव था, इतना सब था, फिर बाद में धीरे से कहेंगे कि और केवल ज्ञान हुआ स्वंतर्मुख में। अब जीवन दर का चरित्र सुनाएंगे तो उसमें कहेंगे कि एक कुत्ता मरता था तो जरा सा नमोकार सुना दिया तो स्वर्ग में चला गया, अभी इतना नमोकार पढ़ने से इतना पढ़ेगा, हालांकि कई बार अपन पढ़ चुके मगर अभी तक नहीं भाव स्वर्ग, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे, वहां तो समझदार नहीं है, उसको कहना पड़ेगा ऐसे करके उसे समझाना पड़ेगा। तो ये प्रथमान योग कहलाता है जिसमें पुराण पुरुषों की कथाएं दी हुई हो, उनके चरित्र का चित्रण किया गया हो, जिसमें एक किसी महापुरुष का चरित्र चित्रण किया हो तो वो चरित्र कहलाता है, जहाँ प्रेखशला का पुरुषों की कथाएं दी हो वो पुराण कहलाता है। तो चरित्र और पुराण दोनों ही जो है प्रथमान योग में आते हैं, जैसे अपन कदम पुराण करते हैं, हरिवंश पुराण करते हैं, उत्तर पुराण करते हैं, वर्तमान चरित्र पढ़ते हैं, अपैणिक चरित्र पढ़ते हैं, ये सब जो है प्रथमान योग, इसमें इसके माध्यम से हम धर्म के बारे में जानेंगे, ऐसे कथा कहानी के माध्यम से हम धर्म के बारे में जानेंगे, जो जो अभी कुछ नहीं जानते उनके लिए इस तरह से धर्म का फल बता करके और पाप का फल बता करके और मोक्ष के मार्ग पर आरंभ कर दें। फिर अब अपने अब दूसरे अनुयोग क्या है, कल्याण योग, तो जिसमें हम अपने परिणामों के बारे में, कर्म का मतलब होता परिणाम, तो जिस पहले हम अपने परिणाम के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हमारे परिणाम होते हैं और उसका कैसा कैसा हमें फल मिलता है, किन परिणामों की वजह से मनुष्य पर्याय मिली है, किन परिणाम करेंगे तो नरक जाएंगे, कौन से परिणाम से हमें चारों गतियों में कैसे भ्रमण होता है, किन परिणामों से, तो चारों गतियों का वर्णन करेंगे। लोक क्या है, लोक क्या है, उस लोक में किन परिणामों से भ्रमण कर रहे हैं, ये सब करना योग बताएगा। लोक और अलोक के बारे में भी करना योग बताएगा, लेकिन लोक और अलोक में हमारी अपनी स्थिति क्या है, किन परिणामों से भटक रहे हैं, ये भी करना योग बताएगा। इस माध्यम से धर्म का प्ररूपण किया जाता है, तो वो कहलाता करना योग। इसमें सब आ जाएंगे, जैसे त्रिलोकपण की है जिसमें कि तीनों लोकों का वर्णन किया हुआ है, या कि जीवकांड कर्मकांड है जिसमें कि जीव के परिणाम और उसके द्वारा बांधे गए कर्मों का किस तरह से उसे फल मिलता है, ये सब दिया हुआ है। तो ये ग्रंथ सब करना है, प्रथम कर्म है इसमें का सारी कर्म क्रॉस किया जाएगी करना योग में, क्योंकि परिणामों की चर्चा है। फिर उसके बाद प्रथम कर्म, फिर चरणम, इसके बाद जो है अपने परिणाम संभालने की बात आ गई, कैसे संभालें, तो कहते उपाय बताओ। तो अपने परिणाम संभालने के लिए उपाय क्या है, जो आचरण गृहस्थ का है वो गृहस्थ करे, जो साधु का आचरण है वो साधु करे। इस तरह के श्रावक के और साधु के आचरण की जिसमें चर्चा करेगी वो, उसे मोक्ष मार्ग पर किस तरह से आरूढ़ होना चाहिए ये बताया गया, वो कहलाता चरणा योग, जिसमें आचरण की बात होगी चरणा योग। और फिर उसके बाद में जब आचरण में आरूढ़ हो गया तो कहते कि ये आचरण सो बिना अपने आत्मा और अनात्मा के जाने तुम्हें कोई कार्यकारी नहीं होगा, इसलिए जानो कि आत्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है, सात तत्व क्या है, द्रव का स्वरूप क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, ये द्रव्यान योग कहलाता है, जिसमें लोका जीवा जीव सुखते पुण्या पुण्य च बंध मोक्ष, जिसमें जीव और अजीव, जिसमें पुण्य और पाप, जिसमें बंध और मोक्ष, इन सब की चर्चा करेंगे वो द्रव्यान। इस तरह से ये चार योग के माध्यम से चार चैप्टर में डिवाइड किया है, ऐसा नहीं, चार तरह से हमें समझाने का प्रयास किया, जिसके लिए अपन ने एक बहुत अच्छा उदाहरण ये नीरज जी के उसमें गोमटेश राठा ने उन्होंने दिया है कि एक माँ अपने बेटे को जब रस्ते चलते चलते गिर जाता है तो कैसे समझाती है, तो सबसे पहले जब हाँ बताया था, तो सबसे पहले जब गिर जाती है बेटा गिर जाता है तो माँ क्या कहती है कि अब वो देखो तो सुबह जब बीवी गिर थी तब वो तो बिल्कुल ही रोई थी, ये कैसा है, तू रोता है, तो पहले हमारे महापुरुष हुए थे उनने इतनी इतनी विपत्तियाँ आई फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा था, फिर भी नहीं रोए थे, सब सहन किया था, जरा उनका चरित्र तो उठा करके पढ़ो, तुम कौन सी बेजा बात कर रहे हो, उनने तो बहुत बड़ा कुछ किया। तो इस तरह से अगर मान जावे तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर बाद में कहता है, फिर बाद में क्या कहते, सवेरे झगड़ा किया था से उसका फल मिला और जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। करणानी योग हमें यही बताता है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, अगर अभी भी समझ जाओ तो चेत जाओ, नहीं चेतता है फिर भी रोता रहता, तो फिर बाद में थोड़ा डांट कर खुद तो देख के चलता है, अब गिर गया तो रो रहा है, फिर हो जाओ, अब जो खुद तो देख करके चलता नहीं है, अगर ठीक ठीक चलते अपना आचरण ठीक रखते तो काहे के लिए यहाँ पर गिरते, तुम खुद देख करके नहीं चलते हो, फिर गिर जाते हो तो रोते, और उसके बाद जो है थोड़ा डांट लिया लेकिन फिर भी चुप नहीं हुआ तो फौरन गोद में उठा लेती है, तो कहती कि वाह मेरा राजा बेटा तो गिर नहीं सकता, वो तो घोड़ा कूदा था, घोड़ा कूदा था, राजा बेटा नहीं, अब क्या हो गया, कि दुर्ज्ञान योग हो गया कि हमारे आत्मा का स्वभाव ये है, हमारे आत्मा का स्वभाव प्रचार करना नहीं है, गिरना हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं, वो तो घोड़ा कूदा था, वो तो पर्याय थी, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम तो अपने आप तुम तो राजा बेटे हो, तुम तो सब तुम देख निरंतर स्वभाव वाले हो, ये तो सब बाहर का प्रपंच है संसार, सबसे अच्छा उदाहरण है, मैंने एक माँ अपने बेटे को जिस तरह संभालती है उसे उसी तरह हमारे आचार्य ने दुनवाणी ने हमें संभालने के लिए जैसे बने तैसे कहानी किसका से समझ में आता है, चलो कहानी करना नहीं उस समझ में आए, करना नहीं उससे आचरण की कथा से समझ में आए, विज्ञानी उस जैसे समझ में आए उसी तरह से समझ लो, बात तो एक करोगे तो सब हो जाएंगे, एक अनुयोग पढ़ने से चारों अनुयोग आ जाते हैं, ये ध्यान ऐसा नहीं है कि एक अनुयोग पढ़ेंगे तो बाकी तीन अनुयोग, प्रथमा अनुयोग नहीं पढ़ो पकड़ना उसमें तो किस्सा कहानी नहीं है, लेकिन आप कोई पढ़ें तो उसमें सारी कर्म फिलॉसफी आ जाएगी, उसमें सारे द्रव और तत्व का स्वरूप आ जाएगा, उसी में कहानी भी चल रही है सब कुछ, तो ग्रंथ इस तरह से इसी तरह अपन ग्रंथों को डिवाइड भी कर देंगे, जो अपन ने चर्चा करी थी कि ज्ञानी इसमें ग्रंथ कौन कौन से, तो प्रथमानुयोग के ग्रंथ हो गए पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण या महापुराण जिसको बोलते हैं, इन्हीं में चरित्र आ जाएंगे, महावीर चरित्र, वर्तमान चरित्र, दीक्षानिक चरित्र, ये सब प्रथमान योग है। करणान योग में आपको बताया तिलो पंडित भी पढ़िएगा, गोमंशा कर्मकांड जीवकांड पढ़िएगा, ये सब करणान योग के ग्रंथ आ जाएंगे, अगला इत्यादि भी करणान योग में आ जाएगी और द्रव्यान योग में भी, अपन एकदम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रंथ पर्टिकुलर एक ही अनुयोग का है, पर उसमें जो प्रमुखता है उसको देख कर कर सकते हैं। करणान योग में तो मुनियों के आचरण के लिए मूलाचार है, श्रावक के आचरण के लिए श्रावकाचार है, 35 श्लोक श्रावकाचार है, और हम लोगों के मूलाचार एक ही है, मूलाचार बहुत सारे नहीं, एक ही मूलाचार है। आपको अपने काम के चार 35 प्रकार के देखे हैं, तो ये हो गया चरणान योग। और फिर द्रव्यान योग में, द्रव्यान योग में सारे ग्रंथ आते हैं, जो थमला जय थमला है ये सब द्रव्यान योग के ग्रंथ कहलाएंगे, सिद्धांत ग्रंथ कहलाएंगे, और जितना भी अध्यात्म है वो सब अध्यात्म ग्रंथ भी जो है इसी द्रव्यान योग में, जिनमें भी सात तत्वों का प्ररूपण किया। तो मोक्ष शास्त्र भी जो है द्रव्यान योग में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी सात तत्वों का प्ररूपण किया। इस तरह से ये ग्रंथों का इवैल्यूएशन, चार कथाएं और चार नियोग और उनकी पुस्तक लिखना है। अभी तो चारों बताएं चारों अनुयोगों का स्वरूप लिखने और उसके बाद चारों अनुयोगों ग्रंथ लिखने ताकि अपने को एक आइडिया, कथाएं तो लिखी लें आज उससे लिख पाएंगे, अनुयोग फिर कर लिखने। कथन करना कथा कहलाती है, कथन करना कथा कहलाती है। बड़े मुश्किल में कथाकार मिला था मुझे, कथन करना ही कथा कहलाती है। धर्म का कथन करने वाली धर्म कथा, धर्म का कथन करने वाली धर्म कथा कहलाती है। शेष सभी पाप बनाने वाली कथाएं धर्म का कथन करने वाली धर्म कथा कहलाती है। शेष सभी पाप बढ़ाने वाली कथाएं विकथा कहलाती, विकथा कहलाती। बामी छुट्टियों की बात, वाह वी वाला ने विकथा, विकथा कहना ये अपन को शार्ट में धर्म कथा विकृत कथा, पाप बढ़ाने वाली कथा। चोर कथा कर रहे हैं कि वो फलाना चोर बड़ा फेमस हुआ, ऐसे चोरी करता था और ऐसा करता था, इसी में लगे गोशिप डिस्कवर बोलते हैं ना, वही विकथा आएगी। व्यर्थ की चर्चा करने कोई उसका सेंस नहीं, पाप बढ़ाने वाली कथा, चोर कथा, राज कथा, आहार कथा, इस तरह से ये सब जो है वी कथाएं कथा उनके पर चर्चा नहीं है। धर्म कथा चार प्रकार की, नंबर वन आक्षेपणी कथा, आक्षेपणी बड़े बड़े आकी मात्रा, आमे आकी मात्रा आ आक्षेपणी कथा। क्षा जो है मेरा उच्चारण थोड़ा अलग ढंग का है, काटा योगिक क्षा क्षत्रज्ञा वाला आक्षेपणी कथा,
आक्षेप
से आक्षेपण, तत्वों का सही सही प्ररूपण करने वाली कथा। आक्षेपणी कथा के मायने क्या हुआ, तत्वों का सही सही प्ररूपण करने वाली कथा। यह कथा अनेकांत दर्शन का पोषण करती है, यह कथा अनेकांत दर्शन का पोषण करने वाली है, यह पोषण करती है। नंबर दो विक्षेपणी कथा, विभिन्न दर्शनों के द्वारा उत्पन्न भ्रम को दूर करके, विभिन्न दर्शनों के द्वारा उत्पन्न भ्रम को दूर करके सभी का समन्वय करने वाली, और अनेकांत दर्शन की स्थापना करने वाली, सभी का समन्वय करने वाली और अनेकांत दर्शन की स्थापना करने वाली कथा विक्षेपणी कथा। संवेदनी, पुण्य के फल का कथन करने वाली कथा संवेदनी कथा कहते हैं। पुण्य के फल का कथन करने वाली कथा संवेदनी कथा कहते हैं। नंबर चार निर्वेदनी कथा, निर्वेदनी भी कह सकते हैं, निर्वेदनी भी कह सकते, विचार और दान दोनों आते हैं। निर्भीक कहलाता है वैराग्य को, निर्वेदनी कथा पाप के फल का कथन करके पाप से विरक्त करने वाली कथा, पाप के फल का कथन करके पाप से व्यस्त करने वाली कथा, कथन करने वाली कथा निर्वेदनी कथा कहलाती है। चार कथाएं होनी चाहिए, हो गया पूरा टाइम। लिख लेंगे तो एक बार फिर से रिपीट करो, अनियोग चारों अनियोग
इसको थोड़ा सा खुलासा
बताइए।
आपने
बताया ना कि पाप को ज्यादा अच्छा याद है,
ज्यादा
मैंने लिखा शॉर्ट में,
बस थोड़ा सा जो अभी आपने
उदाहरण दिया था वो सब क्या आपके
उससे और अच्छा
उदाहरण देकर भी लिखना पड़ेगा। कोई भी अपन कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं कि जिसमें हमने पाप के फल को विशेष रूप से बताया और फिर पाप के फल का विशेष वर्णन करके उसका फल फल बता करके उसको विरक्त हो जाएगा वो तो अपने आप ही। देखो उसने इतना छोटा सा फल दिया था तो उसको इतना बड़ा फल मिला, इतनी झूठ बोली थी उस झूठ का इतना फल मिला, और किसी ने भी सच बोला था तो इतना बड़ा फल बता दिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जिन्हें कथा सुनाई है उसमें गीता एक कौए अकेले का मांस छोड़ा था इतना फल पुण्य का फल बताया, ये कौए का मांस छोड़ने का एक नमोकार मंत्र इतना सब पढ़ के सुना दिया था उसका कल्याण। इस तरह से जो है ये ज्ञान है और डिटेल में परिभाषा में कलो, पर ये याद रह गया पुण्य का फल बताने वाली कथा, सफल बता के विरक्त करने वाली कथा, अनेकान दर्शन की स्थापना करने वाली कथा और विभिन्न दर्शनों के हमको दूर करने वाली कथा, इस तरह से जिसमें कार्य हो वो बाला तो जिसके बिना कार्य है वो उसको निमित्त, जिसमें कार्य हो जैसे खड़ा बना वो बाला क्या है, यदि घड़ा काय बना यदि मिट्टी बना कुहाने तो बना नहीं चके बना गड़ा घड़ा तो मिट्टी बना तो किसका बना, तो जिसका बना होगा वो। इसमें नीरज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि वो भी बना हुए बैठे आचार में था चकला में आए बेलन में आए आपके आगे भी जरूरी है चूल्हा भी है सब कुछ है आप भी हैं कुछ भी कहते। अब जब रोटी बन जावे तो ये देखना कि कौन सी चीज अनुपस्थित हो गई और कौन कौन बची रही है जो तो पता देता हूँ जो कहते हैं आज भी छुपी जम जल गई है चूल्हा भी जो कहते हैं गायब क्या हो गया क्योंकि तो आटा गायब हो गया उबाल आ गया रोटी इसी से बनी जी कहाँ चला गया आटा तो वो रोटी में कन्वर्ट हो गया। जो जो कार्य रूप परिणत हो गए वो उबाल आ गए और जो उसमें सहयोगी हो गए वो समझ गया था। तो बाकी सब किसके माध्यम से बनी तो कहते इन्हें बनाई वो काहे से बनी बहुत अच्छा है देख लेना कारी होने पर कि क्या क्या गायब हो गया जो पहले था पता नहीं जाएगा जो उपादान थी गई मिट्टी गायब हो गई घड़ा बन गया तो मिट्टी जो है उपादान का है और बाकी सब चीजें तो
संस्कार कई लोगों ने बहुत अच्छा ये जो संस्कार थे ईसा मसीह का सुनाया था
दो दो लोग दो चित्र बनाए थे चंदे का एक बार बचपन का और एक
श्री विद्या सागर गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे श्री विद्या सागर गुरुवर संसार सिंधु के तुम हो किनारे श्री विद्या सागर गुरुवर हमारे तुम ज्ञान सागर की पहली लहर है जाना कहाँ पर ये तुझको खबर है, तू ज्ञान सागर की पहली लहर है। जाना कहाँ पर ये तुझको खबर है, हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया तेरे सहारे। सागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। विद्या सागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तुम गीत रागी हो राग नाई, श्री जैन दर्शन की महिमा बताई। तुम नीत रागी हो राग लाई, श्री जैन दर्शन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो गुरुवर हमारे। श्री वेश सागर गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तुम हो अहिंसा धर्म की मसीहा, तुम स्वात की गुण में हूँ पपिया। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वात की गुण में
बारह लगना ना पहला।